नमो वचायाणम नमो लोए सवसाहूणम कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिनेन म्यूं वेयण महाहियारं विविह हियारं परूवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्रीधरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 11वीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें अभी हम वेदना काल विधान अनुयोग द्वारा देख रहे हैं। क्षेत्र की बात हो चुकी अपने, अभी यहाँ अभी हम पृष्ठ संख्या 91 पर आ गए। 91 ये उत्कृष्ट काल, यानी काल की अपेक्षा वेदना उत्कृष्ट किसके होती है उसकी बात चल रही थी। उसको हमने देखा था कि कोई भी पंचेंद्रिय जीव, कोई भी कहने से उसमें कोई अवगाहना का नियम नहीं है, ऐसा कहना चाहते थे। जो संगी है, पंचेंद्रिय है, मिथ्या दृष्टि है, सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ है। कर्मभूमि का होगा, अकर्मभूमि यानी देवनारकी भी हो सकते हैं, और कर्मभूमि प्रतिभागोत्पन्न यानी वो स्वयं ब्रह्मण आउटर साइड व द्वीप व समुद्र। संख्यात वर्ष आयुष का अथवा असंख्यात वर्ष, देव मनुष्य तिरंज अथवा नारकी है, तीनों वेद में से कोई भी वेद वाला है, जलचर थलचर अथवा नभचर है, साकार उपयोग वाला, क्योंकि ज्ञान उपयोग वाला लेना है और जागृत भी लेना है, और श्रुतोपयोग से युक्त है, और कैसा होना चाहिए कि उत्कृष्ट स्थिति बंध के योग्य, ऐसे उत्कृष्ट स्थिति संकलेश में वर्तमान है। संकलेश के स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण है, उसमें भी उन स्थानों में भी उत्कृष्ट वाला लेना, या अन्य भी संकलेश स्थानों से हो सकता है उतनी स्थिति बांध सकता है, इसलिए कहते हैं अन्य भी मध्यम संकलेश परिणाम से युक्त है। तो उस ऐसे जो जीव है उसको ज्ञानावरण कर्म की वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट है। ये सब हमने इसका वर्णन विस्तार से देखा था। अब यहाँ 91 पृष्ठ पर आते हैं, हम चौथी लाइन नया पैराग्राफ जहाँ से है, उत्कृष्ट स्थिति संकलेश स्थान जो बताया था उसकी बात फिर दोबारा लेते। देखो, उत्कृष्ट स्थिति के बंध योग्य संकलेश स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। स्थिति बंध का कारण है कषाय, उसमें संकलेश अधिक हो गए तो लंबी स्थिति बनती है और कम हो तो कम स्थिति बनती है। तो ये जो संकलेश के स्थान है, वेरियस अलग अलग डिग्री वाले संकलेश परिणाम, उसको एक एक स्थान कहेंगे, तो ये संकलेश स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। यानी असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग संकलेशों के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति बन सकती है। एक ही इतना एक समय वाली वो उत्कृष्ट वाली उतनी बंधने के लिए संकलेश अलग अलग हो सकते हैं।
लोग पूछते हैं कि हमें ज्ञानावरणी कर्म नहीं बनना है तो कौन से परिणाम करें? अभी असंख्यात लोक प्रमाण तो उत्कृष्ट के लिए, तो कौन सा नहीं करे कैसा बताएं? क्यों ये हमें बात ख्याल में नहीं होती है ना कि कोई भी परिणाम करो ज्ञानावरणी कर्म बनता ही है। सिर्फ तत्वार सूत्र में कुछ अमुक पॉइंट्स दिए हैं, इससे ज्ञानावरण कर्म बनता है, इससे लोग समझते हैं कि बाकी के टाइम में बनता ही नहीं है।
यानी वैसे परिणामों में तीव्र अनुभाग और लंबा काल बनता है। जब कहते हैं ना ज्ञानावरण कर्म के बंधन के कारण बताए जाते हैं, तो मोटे स्थूल तौर पर जो बताए जाते हैं वैसे तो 10वें गुणस्थान तक ज्ञानावरण कर्म है। अंतराय भी वो जो कुछ है हमने देखी थी, विच्छित्ति जहाँ जिसकी होती है। अब देखते यहाँ, ये जो असंख्यात लोक प्रमाण संकलेश स्थान है उनमें से अंतिम संकलेश स्थान के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति को बांधता है, इस बात के ज्ञापनार्थ उत्कृष्ट स्थिति के बंध योग्य उत्कृष्ट स्थिति संकलेश में वर्तमान ऐसा कहा है। अब इससे उत्कृष्ट स्थिति के बंध योग्य शेष संकलेश स्थानों के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति के बंध का निषेध प्राप्त होने पर उनसे भी स्थिति को बांधता है, इस बात को जतलाने। अच्छा, उनसे भी उत्कृष्ट डालना बीच में उक्त पड़ा था। उक्त ने ऊपर वाली उत्कृष्ट तो कहते हैं, उनसे भी उक्त स्थिति को बांधता है, इस बात को जतलाने के लिए क्या कहते हैं। कोई समझेगा कि वो उत्कृष्ट स्थिति संकलेश वाले जो संकलेश स्थान वाला है वही अकेला उत्कृष्ट स्थिति को बांधता है, ऐसा कोई न समझे, इसलिए अन्य भी संकलेश स्थानों के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति बनती है, यह बात यहाँ बताते हैं। इसलिए कहते हैं कुछ मध्यम परिणामों से युक्त जीव के ऐसा कहा गया है। ऊपर लिखा था ना, वो इसी मध्यम ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, बीच में सूत्र में भी था और यहाँ भी अभी देखा था हम। इसी मध्यम परिणाम से ति उत्तम, यानी अन्य भी परिणामों के द्वारा संकलेश परिणामों के द्वारा बांधता है, अथवा उत्कृष्ट स्थिति के बंध योग्य असंख्यात लोक प्रमाण संकलेश स्थानों के पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र खंड करके उनमें अंतिम खंड का नाम उत्कृष्ट स्थिति संकलेश है। इस अंतिम खंड में रहने वाले जीव के उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है। अब इससे शेष द्विचरम आदि खंडों के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति के बंध का प्रतिषेध प्राप्त होने पर उनसे भी उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है, इस बात के ज्ञापनार्थ कुछ मध्यम परिणामों से युक्त जीव के ऐसा कहा है। यानी ये जो जिन जिन संकलेशों के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति बन सकती है उन सभी को यहाँ समझना चाहिए, ये बात इससे सिद्ध होती है। उपर्युक्त विशेषणों से विशिष्ट जीव के द्वारा, अब वो लंबा उत्कृष्ट यानी कितनी है वो बात यहाँ बताते हैं। ज्ञानावरणीय के 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थितिबंध के बांधने पर उसके ज्ञानावरणी की वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। यह कौन सा सागर समझना, यहाँ तीन प्रकार के सागर है ना, व्यवहार सागर, अद्धा सागर और उद्धार सागर। हाँ, उद्धार सागर और अद्धा सागर, अद्धा सागर समझना। हाँ, सबसे बड़ा वाला अद्धा सागर। उद्धार सागरों में क्या नापते हैं और अद्धा सागर में क्या नाप, हाँ उद्धार सागरों में ये मध्यलोक के असंख्या द्वीप समुद्रों की संख्या नापते हैं, वो ढाई अद्धा सागर है, उद्धार सागर है, यानी 25 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्य। और यहाँ जो है कर्मों की स्थिति नापते हैं तो ये अद्धा सागरों में, या देवों के नारकियों की आयु नापते हैं वो ये अद्धा पल्ले अद्धा सागरों में नापते हैं। व्यवहार सागर तो वो हम जो इतना खड्डा करो रोमखंडों से भरो 100 साल के बाद एक निकालो, अभी वो रोमखंडों की संख्या निश्चित है वहां पर बताइए शास्त्र में, तो 100 साल में एक, तो उस संख्या को 100 से गुणा करो तो उतने वर्ष हो जाएंगे, मैं तो वो व्यवहार से उसको पल्य कहा है, नहीं तो वो संख्यात हो जाएगी। हाँ, असंख्यात उद्धार पल्यों का या सागरों का, अपना अपना पल्ले के साथ पल्ले लेना है, सागर के साथ सागर लेना, उसमें जिस रोम खंडों से हम नापते हैं ना, देखो व्यवहार पल्ले में हमने रोम खंडों से नापा था बराबर, अब उस एक एक रोम खंडों के असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हैं उससे गुणा करो तो उद्धार सागरों का रोम खंड होता है, और उद्धार सागर के रोम खंडों को असंख्यात वर्षों के समयों से गुणा करो तो अद्धा सागर वाला या अद्धा पल्ले वाला रोमखंड होता है, यानी वो असंख्यात गुणा है, इतना समझना। हाँ, अब कहते तब वदिरित्तम अनुकस्सा, ये उत्कृष्ट स्थिति की बात हुई। दस कोड़ा कोड़ी पल्लों का अपना अपना सागर होता है, अपना अपने ने व्यवहार पल्ले लगाओ तो व्यवहार सागर होगा, उद्धार पल्ले की बात करेंगे तो उद्धार सागर होगा, और आधा पल्लों में नापेंगे तो आधा सागर हो। उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना होती है। अनुत्कृष्ट वेदना ने काल अपेक्षा ही चल रही बात, अभी यहाँ सब काल ही समझना, यानी जो उत्कृष्ट नहीं है उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे। 30 कोड़ा कोड़ी सागर से एक समय कम उसको भी अनुत्कृष्ट कहेंगे। उससे व्यतिरिक्त यानी उसके अलावा, अर्थात उत्कृष्ट स्थिति बंध से भिन्न अनुत्कृष्ट स्थिति वेदना होती है, यह सूत्र का अर्थ है। वह चूंकि अनेक प्रकार की है अतः उसके स्वामी भी अनेक प्रकार के हैं। एक एक समय के डिफरेंस से कितने अलग अलग जीव होंगे, उनकी प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। 3000 वर्ष आबाधा करके जो 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध करता है उसकी आबाधा है 3000 वर्ष, और जो 30 कोड़ा कोड़ी सागर में मान लेते 2-4-5 समय कम वाली आबाधा वो स्थिति बंध करेगा तो क्या होगा? हाँ, आबाधा उतनी ही रहेगी, एक समय कम, दो समय कम, बहुत सारे बड़ा एक कांडक तक आबादा तो उतनी होगी, आबादा में फर्क नहीं होगा। आबादा में जब एक समय कम होता है तो वो कांडक छोड़कर नीचे वाली स्थिति दूसरी स्थिति बांधता है, वो जी विशिष्ट स्थिति तक आबादा का प्रमाण उतना ही है। तो जहां तक वो आबादा का उतना ही प्रमाण है, स्थिति के विकल्पों को उसको कहेंगे वो आबादा कांडक है। अलग अलग स्थिति बांधती है ना, हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 30 कोड़ा कोड़ी में उतरते उतरते बहुत सारे, यहाँ जो उदाहरण दिया है 240 उत्कृष्ट स्थिति समझ लेते हैं, और घटते 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 और आबादा कांडक का प्रमाण 30 होगा, तो 240 239 238 ये सारे जो स्थिति के विकल्प है, स्थिति के भेद है, स्थिति के हो कहाँ तक 210 तक, उन सभी के लिए आबादा मान लेते हैं यहाँ 8 समय बांधी है तो सबके लिए आबादा 8 ही होगी, तो कांडक कितना होगा? आबादा का कांडक 30 का होगा। ये जो 30 है वो आबादा में नहीं समझना, उतनी ही आबादा के लिए स्थिति के अन्य अन्य विकल्प कितने हैं उसको आबादा कांडक कहते हैं। देखो इसको पढ़ेंगे तो ख्याल होगा, 3000 वर्ष आबादा करके 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मात्र स्थिति के बांधने पर उत्कृष्ट स्थिति होती है, ये उत्कृष्ट स्थिति बता दिए। फिर अन्य जीव के द्वारा एक समय कम 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थिति के बांधने पर प्रथम अनुत्कृष्ट स्थान होता है, यानी अनुत्कृष्टों में ये बड़े वाला सबसे अधिक। यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण संदृष्टि में 240 अंक है, उत्कृष्ट हम मान लेते 240 है, समझाएंगे ना अभी हमको, और अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण अनुत्कृष्टों में जो उत्कृष्ट है उसका प्रमाण 239 अंक है। उससे अन्य जीव के द्वारा दो समय कम उत्कृष्ट स्थिति के बांधने पर द्वितीय अनुत्कृष्ट स्थान होता है, ये आसान है, यहाँ उसमें कुछ बहुत भारी बात नहीं है, उसका प्रमाण 238 है। इस क्रम से आबाधा कांडक से हीन उत्कृष्ट स्थिति के बांधने पर, आबाधा कांडक हमने 30 मान लिया है तो 240 में 30 कम करो 210 तक, तो वहां तक उत्कृष्ट स्थिति के बांधने पर अन्य अनुत्कृष्ट स्थान होता है, यहाँ आबाधा कांडक का प्रमाण 30 अंक है। इसको उत्कृष्ट स्थिति में से घटा देने पर वहाँ का स्थितिबंध स्थान इतना होता है। ये बंध की अपेक्षा ही बात चल रही है, स्थितिबंध के स्थान देख रहे, तो 240 में से 30 गए तो 210, तो 240 हो या 210 हो और बीच वाले कुछ भी हो, आबाधा का प्रमाण तो उनके लिए उतना ही होगा। 8 समय अभी हम मान लेते हैं, जैसे हमने 30 कोड़ा कोड़ी में 3000 वर्ष मान लिया है, ये वो तो माना नहीं, ये माना है 210, ये काल्पनिक फिगर है, वो तो एक्चुअल है। अब उत्कृष्ट आबाधा एक समय कम हो जाती है, उत्कृष्ट आबाधा हम मान लेते 8 समय है, तो उसमें से एक समय कम हो जाएगा तो स्थिति के और अन्य विकल्प चालू हो जाएंगे। देखो, आबाधा एक समय कम हो जाती है क्योंकि आबाधा के अंतिम समय में प्रथम निषेक निर्जीर्ण हो चुका है, संदृष्टि में उत्कृष्ट आबाधा का प्रमाण 8 है, पश्चात एक समय अधिक आबाधा कांडक से हीन, आबाधा कांडक हमने 30 मान लिया, उसमें एक समय अधिक करो तो 31 हो गए, उससे हीन क्या है, उत्कृष्ट स्थिति के बांधने पर। नहीं, एक समय खिरता है उसकी बात यहाँ नहीं है। देखो, उसको निशिक नहीं है, खिरने वाले निशेकों को निशेक नहीं कहा है, ये पूरे आबाधा कांडक के प्रमाण को वहां कहा है, क्योंकि जैसे गुणहानि है, निशेक है, ये शब्द तो सभी में यूज होते हैं। अब यहाँ क्या है, वो एक कांडक समाप्त हुआ, आबाधा के अंतिम समय के लिए एक 30 समयों वाला अलग अलग वो था, उसको एक कांडक को एक यहाँ निषेक कहा होगा शायद। अभी हम 7 समय तक आए तो उसके लिए अन्य स्थिति विकल्प चालू हो गए, 209 से लेकर नीचे के, इस तरह समझना उसको, कांडकों में समझना। वो अपना कर्म का निषेक खिरता है उसकी बात यहाँ नहीं है, हाँ कांडकों में एक इतने आबादा के लिए ये रेंज है, किसके स्थिति की रेंज, अब हाँ कांडक, आबादा एक समय कम हुआ तो स्थिति का जो कांडक है जिसको हम आबादा कांडक कहते हैं, परंतु वो कांडक किस में देखते हैं, हम स्थिति के विकल्पों में देखते हैं। हाँ वो संकले संग परिणाम अलग है, और यहाँ आबादा कांडकों में हम आबाधा एक एक समय से कम इतने देते, अभी वो बांधने योग्य परिणाम वो तो अलग हो गए, उसको तो अलग गिनेंगे, यहाँ तो हम कितना ही देख रहे हैं, स्थिति के विकल्प और आबाधा का प्रमाण। 240 से 210 तक आबाधा 8 समय थी, अब 7 समय हो जाएगी तो 209 से नीचे आएंगे। फिर देखो, संदृष्टि में उत्कृष्ट आबाधा का प्रमाण 8 है, पश्चात एक समय अधिक आबाधा कांडक से हीन, यानी आबाधा कांडक हमने 30 देखा, उसमें एक समय अधिक करो, वो किस में से हीन करना, उत्कृष्ट स्थिति के बांधने पर। 240 में से 31 गए, क्योंकि 30 गए तो हम 210 तक आ गए थे, अभी 209 पर आना है, इतने बांधने पर वह अन्य अनुत्कृष्ट स्थान विकल्प होता है, यानी ये 209 हो गया। 209 पर क्या विशेषता थी, एक आबाधा कांडक समाप्त हुआ और 209 में दूसरा आबाधा कांडक चालू हो गया, वह आबाधा भी उत्कृष्ट में से अभी एक समय कम हो गई। इस क्रम से दो आबाधा कांडकों से हीन उत्कृष्ट स्थिति के बांधने पर अभी दो आबाधा कांडक से हीन, यानी 60 कम हो गए और उतनी उत्कृष्ट स्थिति में बांधेंगे, पहले तो 210 हुई थी उसमें और 30 घटा। अन्य अनुत्कृष्ट स्थिति विकल्प होता है तो 240 में से 60 गए तो 180 वाला, अन्यतर अन्य अनुत्कृष्ट स्थिति विकल्प होगा। इसी प्रकार इसी क्रम से एक समय कम, दो समय कम इत्यादि क्रम से एक समय कम आबाधा कांडक से अधिक ध्रुव स्थिति तक निरंतर वो नरिंतर हुआ निरंतर स्थानों को उत्पन्न कराना चाहिए। क्या कहते हैं हम एक एक स्थान देखेंगे, जैसे हमने 240 के बाद 239 वाला देखा, 238 वाला, और फिर उसमें से बीच बीच वाला एक हमने लिया, एक एक कांडक जहां बदलता है उसको हमने गिना, क्योंकि बीच में एक एक समय से कम वाले स्थान सभी है, फिर भी हमने 240 वाला एक लिया, 30 का कांडक होता है तो 209 वाला लिया, और फिर ये दो कांडक कम होते तो 180 वाला लिया, तीन कांडक हो गए, चार कांडक हो गए, इस तरह से गिनना। तो ऐसे करते करते कितनी स्थिति तक हो सकता है, तो उसको कहते ध्रुव स्थिति के ऊपर कितना का, देखो इत्यादि क्रम से एक समय कम आबाधा कांडक से अधिक, आबाधा कांडक है 30, एक समय कम हो जाएगा 29, उससे अधिक ध्रुव स्थिति। अब यहाँ ध्रुव स्थिति उन्होंने 31 मान ली है, समझाने के लिए हम पहले इन फिगर्स इसको लेकर समझेंगे, फिर बाद में उसको देखेंगे। क्या कहते हैं आबाधा कांडक में से एक समय कम कर दो, वो ध्रुव स्थिति में मिला दो, हमने आबाधा कांडक 30 माना है, उसमें से एक कम करोगे तो 29 आ जाएंगे, और उसको ध्रुव स्थिति 31 में मिलाओ तो 60 हो जाएंगे। तो वहां तक निरंतर स्थानों को उत्पन्न कराना चाहिए, यानी हमने जो 240 से निरंतर एक एक कम घटते 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 कहां तक आना है, 60 तक, उसका प्रमाण 60 है। इसमें से एक समय कम, दो समय कम इत्यादि क्रम से बंद कराकर, यानी उसमें भी और एक एक घटता गया, एक समय कम, दो समय कम, तीन समय, सर्व विशुद्ध संगी पंचेंद्रिय की ध्रुव स्थिति तक उतारना चाहिए। ये स्थिति की बात चल रही है अभी, पहले तो हमने बंद स्थान वगैरह भी बात देखे थे। तो कहते सर्व विशुद्ध संगी पंचेंद्रिय की ध्रुव स्थिति तक उतारना चाहिए, यानी मिनिमम उतनी स्थिति होगी वहां तक उतारना चाहिए, ध्रुव स्थिति कहा उसको। पश्चात ध्रुव स्थिति को बांधने वाले जीव का अन्य पुनरुक्त स्थिति विकल्प होता है, या बंद की बात है, ध्रुव स्थिति यानी इतनी तो मिनिमम बांधेगा ही बांधेगा, सर्व विशुद्ध तो अधिक से अधिक विशुद्ध परिणाम के द्वारा मिनिमम बंद होगा ज्ञानावरण का, तो वो मिनिमम कितना हो सकता है उसको यहाँ ध्रुव स्थिति कहा है। तो कहते हैं पश्चात ये ध्रुव स्थिति तक उतारना चाहिए कहा ना, यानी अभी हमने 60 से शुरू किया, 60 में से एक कम समय करो, 59 58, ऐसे करते 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 ध्रुव स्थिति हमने 31 मान ली है, 31 तक उतारना चाहिए, ध्रुव स्थिति तक उतारना चाहिए। पश्चात ध्रुव स्थिति को बांधने वाले जीव का अन्य अपुनरुक्त स्थिति विकल्प होता है, यानी 31 वाला एक स्थिति विकल्प होगा। यहाँ ध्रुव स्थिति का प्रमाण 31 है, हमने 240 से शुरू किया था और एक 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 विकल्प यहाँ तक बताए। अब इसके नीचे के स्थिति बंध स्थान संगी पंचेंद्रियों में नहीं पाए जाते, क्योंकि सर्व विशुद्ध संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के द्वारा बांधी गई जघन्य स्थिति सत्व समान जघन्य स्थिति को ध्रुव स्थिति रूप से ग्रहण किया गया है। ये सर्व विशुद्ध संगी पंचेंद्रिय जीव जितने जघन्य स्थिति सत्व समान जो जघन्य स्थिति बांधता है उसको ध्रुव स्थिति कहा है, इसलिए पंचेंद्रियों में स्थिति बंध स्थान इतने ही पाए जाते हैं। पंचेंद्रियों के स्थिति बंध की बात यहाँ की है, क्योंकि हमने वो संगी पंचेंद्रिय वाला जीव लिया था, उत्कृष्ट स्थिति से लेकर कहाँ तक बांधता है उसकी बात की। मिथ्या दृष्टि का सर्व विशुद्ध ऐसा कहाँ कहा, वो तो उत्कृष्ट स्थिति की क्या अजगण्य में आएंगे क्या, अच्छा, ये अनुत्कृष्टों की बात चल रही है। वैसे ही होनी चाहिए, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय कहा है, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि नहीं कहा है। वो जगन्य में और किसको लिया क्या? एक मिनट आगे जरा देखते हैं। ये सब उत्कृष्ट की बात है। जगन्य काल में तो एक समय वाला वो स्थिति की अपेक्षा उन्होंने लिया है। काल जब वेदना का काल कहते हैं जगन्य, वो एक समय वाला, वो तो दसवें गुण स्थान के अंत वाला बताएंगे। परंतु यहाँ जो ये स्थिति की बात कर रहे हैं, अभी हम जो जगन्य स्थिति देख रहे हैं, सबसे जगन्य वो तो समय दृष्टि के यानी ऊपर के गुण स्थानों में होते है ना। अभी तो अभी हम वो दसवें गुण स्थान की बात अभी यहाँ नहीं देंगे, जो यथा योग्य अभी हम देखेंगे आगे। ये तो जनरल स्टेटमेंट है वो सर्व विशुद्ध वाला। देखो ये अरविंद भाई क्या कहना चाहते हैं, संगी पंचेंद्रिय के ये तो उत्कृष्ट स्थिति इतनी होती है, और उसके जो कुछ विकल्प हो गए वो फिर असंगी पंचेंद्रिय के इतने हो गए, फिर चतुरिंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, उसमें भी बादर और सूक्ष्म, फिर जगन्य की ओर भी देखेंगे तो एक इंद्रिय का जगन्य भी उसमें है, उसमें ज़्यादा वेरिएशन है, और उसके नीचे फिर ये सबसे मिनिमम हो तो पंचेंद्रियों को ही होगा, सबसे उत्कृष्ट भी पंचेंद्रियों में होगा, सबसे जघन्य भी पंचेंद्रियों में होगा, ये बात वो कहते हैं। तो उससे एक इंद्रिय का जघन्य ये जो बता रहे हैं, तो संक्लेश में लेना, उसमें संक्लेशों में जो कम से कम संक्लेश वाला ले सकते हैं। ये बीच में स्थिति सत्व की बात डाली है उन्होंने। देखो हम पढ़ते आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी। ये बांधी गई स्थिति सत्व समान जघन्य स्थिति लिखा है, जो कुछ ध्रुव स्थिति लिखा है। देखो तो पंचेंद्रियों में स्थिति बंध स्थान इतने ही पाए जाते हैं, ये बात यहां उन्होंने बताई। अब कहते हैं अब इसके नीचे बंध को छोड़कर, अभी तक हमने बंध की बात की थी, बंध को छोड़कर स्थिति सत्व का घात करके एकेंद्रियों में स्थिति सत्व स्थानों की प्ररूपणा करते हैं। सत्व की अपेक्षा एकेंद्रियों में सत्व घटता चला जाता है, उसकी अपेक्षा यहां बात करेंगे। यहां संदृष्टि मूल में देखिए, संदृष्टि में ध्रुव स्थिति का प्रमाण 31, एक स्थिति कांडक का प्रमाण 4 और उत्कीर्ण काल का प्रमाण 4। स्थिति कांडक का अर्थ है स्थिति घटती है एक साथ कांडक, तो उसको 4 समय वाली स्थिति एक साथ घटेगी, और उसके लिए उन्होंने 4 समय लिए। वैसे अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त लगता है नहीं, एक एक निशे गलेगा उसी को कहा है ना, उत्कीर्ण काल उतना ही लिया उन्होंने। इस प्रकार स्थापित करके स्थिति स्थानों की उत्पत्ति को कहते हैं। ये अलग अलग स्थान उनमें पाए जाएंगे उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। एक एक निश्चय गल वो एक स्थिति कांड कोई प्रमाण स्थिति उतनी घटने के लिए जितने समय लगेंगे उसको उत्कीर्ण काल कहते हैं। अभी यहाँ परिणामों की चर्चा नहीं कर रहे, अभी यहाँ स्थिति के अलग अलग विकल्प बता रहे हैं। परिणाम तो वहाँ है ही, उसकी कहाँ जाए, वो उत्कृष्ट में परिणाम बता दिया कौन सा है। अब अनुत्कृष्ट में तो वेरियस हो गए, अब अनुत्कृष्ट जो पंचेंद्रियों के लिए अनुत्कृष्ट चल रहे, अभी नीचे नीचे की ओर चल रहे, तो उतने ही किसी अन्य जीव के भी हो सकते हैं ना, द्विंद्रियों के या अन्य जीवों के भी हो गए, उसकी बात नहीं की है। अभी हम एक केंद्रीय तक आ गए, एक केंद्रीय की बात बता रहे, क्योंकि स्थिति के विकल्प अलग अलग कितने हैं। पहले तो बंद की अपेक्षा बता रहे थे, अभी सत्व की अपेक्षा बता रहे हैं। एक केंद्रीय में कितना सत्व है, काल कर्मों का काल कितना है, उसकी बात यहाँ चल रही है। ये जो हमने ऐसे देखा था ना, यहाँ पंचेंद्रिय से वो घटते घटते एक केंद्रीय तक आ जाएंगे। अभी अनुत्कृष्टों में चल रहे ना, अभी जघन्य को नहीं गए हम, अनुत्कृष्टों में ही है अभी। हाँ देखो, ये पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा। इस प्रकार स्थापित करके स्थिति स्थानों की उत्पत्ति कहते हैं, अलग अलग वेरिएशन स्थिति के हमको बताने हैं। यथा एक त्रस जीव एक समय कम उत्कीर्ण काल से अधिक, उत्कीर्ण काल चार लिया ना है, तो उसमें एक समय कम उत्कीर्ण काल ने तीन, उससे अधिक ध्रुव स्थिति सत्व से, ध्रुव स्थिति सत्व अभी हमने 31 माना है, उसमें ये तीन मिला दो स्थिति सत्व से, एकेंद्रियों में प्रविष्ट हुआ, यानी 34 वाला जो 34 से वो एकेंद्रियों में प्रविष्ट हुआ। दूसरा एक जीव एक समय कम उत्कीर्ण काल से अधिक और एक समय से अधिक ध्रुव स्थिति के साथ एक केंद्रियों में उत्पन्न हुआ, ये कितने वाला हो गया, 35 हो जाए ना। एक समय कम उत्कीर्ण काल तीन, वो तो ऐड करना अधिक, और एक समय से अधिक ध्रुव स्थिति, हाँ कितने हुए, 31 + 1 + 3 टोटल 35 हो जाएंगे ना। हाँ, उससे अन्य तीसरा जीव एक समय कम उत्कीर्ण काल से अधिक और दो समयों से अधिक ध्रुव स्थिति के साथ एक केंद्रियों में उत्पन्न हुआ, ये 36 वाला हुआ। पुनः चतुर्थ जीव एक समय उत्कीर्ण काल से अधिक और तीन समयों से अधिक ध्रुव स्थिति के साथ एक केंद्रियों में उत्पन्न हुआ, दे उत्कीर्ण काल ने तीन वाला लिया और ये 3 + 3 = 6 में 6 मिलाए तो ये 37 वाला हुआ। पुनः अन्य एक जीव एक समय कम उत्कीर्ण काल और चार समय अधिक ध्रुव स्थिति के साथ एक केंद्रियों में उत्पन्न हुआ, यानी वो 38 वाला हो गया है ना। ये अलग अलग जीवों को वहां उत्पन्न करा रहे हैं। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल और एक एक समय अधिक ध्रुव स्थिति के साथ, ये कहाँ तक चलना, एक समय कम उत्कीर्ण काल और एक संपूर्ण स्थिति कांडक से अधिक, पूरा स्थिति कांडक अधिक करना, ध्रुव स्थिति के साथ एकेंद्रियों में प्रविष्ट होने तक उत्पन्न कराना चाहिए। यहाँ तो उन्होंने स्थिति कांडक तो चार समय का ही लिया है, परंतु वहाँ कितना लेना है, पूरा एक स्थिति कांडक जितना होता है उतना। इस प्रकार पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र जीवों को एक समय से एकेंद्रियों में प्रविष्ट कराना चाहिए। यानी एकेंद्रियों में प्रवेश होने वाले ये एक एक समय के डिफरेंस वाले इतने जीव, कितने पल्ले के असंख्यात भाग। पुनः एक अधिक स्थिति कांडक मात्र इन जीवों के द्वारा अभी जितना हमने क्या देखा था, देखो कहाँ से शुरू किया था हमने, वो 34 वाला, 35 वाला, 36 वाला, इस तरह से घटते लेते लेते एक अधिक स्थिति कांडक मात्र, जो स्थिति कांडक है उसमें एक अधिक, एक समय नहीं, जीवों की संख्या बता रहे। स्थिति कांडक में जो प्रमाण है उसमें एक अधिक, क्योंकि हमने ऐसे कितने विकल्प करो तो पल्य के असंख्यात विभाग, उसमें एक मिला दो, इतने जीवों के द्वारा स्थितिघात करते रहने पर, वो स्थितिघात होता रहे ना उसमें से एक 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 समय निषेक गलता रहेगा, क्योंकि वहाँ का नया स्थिति बंध तो छोटा है और ये सारे निषेक गलते जाएंगे। तो स्थितिघात करते रहने पर ध्रुव स्थिति के नीचे स्थिति सत्व स्थानों की उत्पत्ति का कथन करते समय, ये जो ध्रुव स्थिति 31 थी वहाँ तक तो पंचेंद्रियों में देखा, अब एकेंद्रियों में जो जीव आया है वो ध्रुव स्थिति से भी नीचे वाले स्थान उसके पाए जाएंगे। करते समय एक समय कम उत्कीर्ण काल से अधिक ध्रुव स्थिति के साथ एकेंद्रियों में उत्पन्न हुए जीव के द्वारा, अभी जो पहला 34 वाला हमने दिया था, क्या देखा था, ध्रुव स्थिति 31 मानी है, उसमें कितना अधिक मिलाया था, एक समय कम उत्कीर्ण काल मिलाया था, 3 मिलाए थे तो 34 हुए थे। उसके द्वारा प्रथम फाली के पतित कराए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है। उत्कीर्ण काल भी हमने 4 समय माने हैं, उसका एक समय गला। यह स्थिति सत्व स्थान पुनरुक्त है, एक समय गला तो कितना हुआ, 34 में से 33 हो गए, तो 33 हमने पंचेंद्रिय में भी देखा था, क्योंकि पंचेंद्रियों हमने 31 तक स्थान देखे थे, तो ये एकेंद्रियों में भी रिपीट हुआ ना स्थान, ख्याल आता है ना, इसलिए उसको पुनरुक्त कहा। जो पंचेंद्रियों में इतना ही स्थान था, एकेंद्रियों में भी है, तो इसको पुनरुक्त स्थान कहा। यह स्थिति सत्व स्थान पुनरुक्त है, 4 लाइन हो गया, अभी 5वां, क्योंकि उसकी ध्रुव स्थिति के ऊपर उत्पत्ति है, यानी 31 के ऊपर वाला ये स्थान है। पुनः द्वितीय फाली के पतित होने के समय में ही उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी स्थान पुनरुक्त ही है, यानी वो पहले 34 में से 33 हुआ वो भी पुनरुक्त है, 32 हुआ वो भी पुनरुक्त है। इस प्रकार स्थिति कांडक की अंतिम फाली को पतित न कराकर उत्कीर्ण काल के अंतिम समय को लेकर स्थित जीव तक ले जाना चाहिए। अभी यहाँ उत्कीर्ण काल 4 समय है, तो उसके अंत समय तक अभी उसको गिराया नहीं, उस वहां तक ले जाना चाहिए। फिर इसको इस प्रकार ही स्थापित करके एक समय कम उत्कीर्ण काल और संपूर्ण एक स्थिति कांडक से अधिक ध्रुव स्थिति के साथ एकेंद्रियों में उत्पन्न हुए जीव के द्वारा प्रथम फाली को पतित कराने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है। देखो अभी हमने कहां से लिया था, वो 34 से शुरू किया था, मान लेते हैं ऐसे करते करते 40 तक पहुंचे गए, मान लेते हैं तो वो 40 वाला भी उसका एक समय कम होगा तो 39 आएगा, तो वो भी पुनरुक्त स्थान ही है ना, यह पुनरुक्त स्थानों को बता रहे हैं, क्योंकि वह ध्रुव स्थिति से अधिक है। द्वितीय फाली के पतित होने के समय में ही उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी स्थान पुनरुक्त है। तृतीय फाली के पतित होने के समय में उत्कीर्ण काल का तृतीय समय गलता है। इस प्रकार अंतर्मूर्त मात्र स्थिति के उत्कीर्ण काल के समयों में द्विचरम समय तक ले जाना चाहिए, यानी द्विचरम उत्कीर्ण काल के द्विचरम तक, ऐसा ही समझना। पश्चात स्थिति उत्कीर्ण काल के अंतिम समय में गलने पर प्रथम स्थिति कांडक की अंतिम फाली पतित हो चुकती है। यानी वो चार, अब यहाँ हमने स्थिति कांडक चार का लिए तो सभी फालियां निकली, फालियां ने लौट, पहला लौट, दूसरा लौट, तीसरा लौट, इस तरह से। यह पुनरुक्त स्थान है क्योंकि ध्रुव स्थिति की अपेक्षा यह स्थान एक समय कम है। अभी हम ये 34 वाला देखते हैं, उसमें एक गला 34 समय स्थिति थी जब एक इंद्रिय में आया, एक समय गला तो 33 हो गया, दो समय गले तो 32 हो गए, फिर 33 हुए, तब तक तो उसकी स्थिति पुनरुक्त ही है ना जो पंचेंद्रियों में देखी थी। हाँ, फिर भी ध्रुव स्थिति जितना ही है ना, 31 में से एक समय कम होगा, 30 होगा, तो उसको अब अपुनरुक्त स्थान कहेंगे। ध्रुव स्थिति तक के सभी स्थान पुनरुक्त है, इतनी ही बात है। पुनः एक समय कम उत्कीर्ण काल से और एक समय कम स्थिति कांडक से अधिक ध्रुव स्थिति के साथ उत्पन्न हुए जीव के द्वारा प्रथम फाली के पतित कराने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, यह स्थान पुनरुक्त है। अभी हम एक समय कम उत्कीर्ण काल यानी 3 और एक समय कम स्थिति कांडक यानी वो भी 3, उससे अधिक ध्रुव स्थिति यानी 37 तक आगे हम पहुंचे हैं, उसमें से एक निकाल दो तो 36 हो गए, वो भी पुनरुक्त है। ध्रुव स्थिति तक सभी पुनरुक्त है, हाँ सभी पुनर। यह स्थान पुनरुक्त है। द्वितीय फाली के साथ उत्कीर्ण काल के द्वितीय समय के गलने पर भी पुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल मात्र फालियों के पतित होने तक ले जाना चाहिए, तत्पश्चात स्थिति कांडक की अंतिम फाली के पतित होने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है क्योंकि स्थिति कांडक की अंतिम फाली के पतित होने पर शेष स्थिति सत्व एक समय कम ध्रुव स्थिति प्रमाण होकर फिर उत्कीर्ण काल के अंतिम समय के गल जाने पर दो समय कम ध्रुव स्थिति पाई जाती है। ये एक-एक अलग अलग जीवों पर घटित कर रहे हो सब। अब आगे वाला दूसरा जीव ले रहे हैं, देखो देखो पुनरुक्त जो है वो पंचेंद्रियों में और अन्य जीवों में समान हो सकते हैं। अभी तो एक इंद्रियों में घटित कर रहे हैं अपुनरुक्त स्थान, जो पंचेंद्रियों में नहीं पाए जाते ऐसी बातें यहाँ बता रहे हैं। ये एक इंद्रियों की बात चल रही है ना, वहां क्या देखा हमने, देखो ये पढ़ना यहाँ, ध्रुव स्थिति तक ही पंचेंद्रियों में स्थान पाए जाएंगे। देखो पेज नंबर 93 दूसरा पैराग्राफ की पहली लाइन, ये ऊपर की अंतिम लाइन पढ़ना। देखो यहाँ ध्रुव स्थिति का प्रमाण 31 है बराबर, अब इसके नीचे के स्थितिबंध स्थान संगी पंचेंद्रियों में नहीं पाए जाते, ध्रुव स्थिति तक पाए जाते हैं। अब आगे वाले जो है वो एक इंद्रियों में हम देख रहे हैं, एक इंद्रियों के कुछ स्थान पंचेंद्रियों के स्थानों के सदृश है, उसको हम पुनरुक्त कहते हैं। जो ध्रुव स्थिति से भी नीचे वाले स्थान है उनको अपुनरुक्त कहेंगे। हाँ? हाँ, सर्व विशुद्ध लिया था ना उन्होंने। हाँ, अब देखें, ये पुनरुक्त अपुनरुक्त की बात चल रही है। अब यहाँ हम 96 पेज पर आए। पुनः एक समय कम उत्कीर्ण काल और दो रूप कम स्थिति कांडक से अधिक। पहले कौन से लिया था? एक समय कम उत्कीर्ण काल और एक समय कम स्थिति कांडक वाला लिया था। अब यहाँ स्थिति कांडक में से दो रूप कम, दो कम करना है और वो ध्रुव स्थिति में अधिक करना है। ऐसे संयुक्त तृतीय जीव के द्वारा प्रथम कांड स्थिति कांडक संबंधी प्रथम फाली के अलग करने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है। यानी स्थिति कांडक की एक फाली गलती है तो यहाँ उत्कीर्ण काल का एक समय गलता है। यह अनुत्कृष्ट स्थिति विकल्प पुनरुक्त है, जैसे हमने वहां 34 फिर 35 फिर 36 वाला लिया था। 36 में से एक कम हुआ तो भी 35 हो तो पुनरुक्त हो जाएगा। पश्चात उसी जीव के द्वारा द्वितीय फाली के अलग करने पर स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है। यह स्थिति स्थान पुनरुक्त है। उक्त जीव के द्वारा फिर से उसी स्थिति कांडक की तीसरी फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का तीसरा समय गलता है। इस प्रकार इस क्रम से एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण समयों के गल जाने पर उतनी ही फालियां पतित होती है और पुनरुक्त स्थान उत्पन्न होते हैं। देखो, एक समय में एक फाली ली है तो जितना उत्कीर्ण काल के जितने समय होंगे उतनी फालियां गिरेगी, उतने समय स्थिति में से घटेंगे। पश्चात इसी जीव के द्वारा प्रथम स्थिति कांडक के अंतिम समय के साथ अंतिम फाली के अलग किए जाने पर अपुनरुक्त स्थान होता है। अभी अपुनरुक्त कब होगा? ध्रुव स्थिति से नीचे आया एक समय तो अपुनरुक्त हुआ, क्योंकि शेष स्थिति सत्व तीन रूपों से उससे भी दो समय कम हो गए, है ना? आप क्या कहते हैं? हाँ, ध्रुव स्थिति 31 तो 29 वाला कैसा दिया स्टार्टिंग में? देखो देखो कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? हाँ, पुनरुक्त हो तो ध्रुव के ऊपर ही समझना। 29 होगा तो हम अपुनरुक्त कहते उसको। ये सारे स्थान एकेंद्रियों के हैं, वो जहाँ जहाँ पंचेंद्रियों के समान हो गए तो उसको पुनरुक्त कहते हैं, और ध्रुव स्थिति के नीचे के जितने स्थान है उसको हम अपुनरुक्त कहेंगे। हाँ, अभी एकेंद्रियों में भी जगन्य की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, वहाँ स्थिति घात होता चला है, क्योंकि वहाँ का बंध छोटा है और जो बड़ी स्थिति है वो घटती चली जाएगी एक 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 समय से वाली। देखो ये नीचे की तीन लाइन फिर पढ़ती हूँ, वो बीच वाले पैराग्राफ की। पश्चात इसी जीव के द्वारा प्रथम स्थिति कांडक के अंतिम समय के साथ अंतिम फाली के अलग किए जाने पर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि शेष स्थिति सत्व तीन रूपों से हीन ध्रुव स्थिति प्रमाण देखा जाता है। पुनः चतुर्थ जीव के द्वारा एक समय कम उत्कीर्ण काल से और तीन समय कम स्थिति कांडक से अधिक। स्थिति कांडक में तीन समय कम कर गए और उसको अधिक किया। देखो पहले हम क्या देखते थे? उत्कीर्ण काल चार लिया, उसमें से एक कम किया था और तीन समय कम स्थिति कांडक भी चार समय का है और उसमें से तीन कम किया, यानी एक वो हुआ, तीन हुए उत्कीर्ण काल के और एक हुआ इसका, और वो ध्रुव स्थिति में मिला देना 31 में चार मिला है, बरोबर। ऐसा जीव शुद्ध स्थिति सत्व कर्मिक होकर प्रथम स्थिति कांडक की प्रथम फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है और पुनरुक्त स्थिति सान उत्पन्न होता है। 35 से शुरू किए थे हमने, अभी 34 हो जाएगा, वो भी पंचेंद्रियों में है ही। पश्चात उसी जीव के द्वारा उक्त स्थिति कांडक की द्वितीय फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी स्थान पुनरुक्त ही है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानों के उत्पन्न होने पर, यानी तीन बार पुनरुक्त हो जाएंगे, पुनः प्रथम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, तब अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि उस समय घातने से शेष रहा स्थिति सत कर्म चार रूपों से कम ध्रुव स्थिति प्रमाण पाया जाता है, वो ध्रुव स्थिति में चार समय कम हो जाता है। ये कांडक को भी कम कर रहे हैं और उत्कीर्ण काल को भी कम कर रहे हैं, इस तरह से वो चार समय कम ध्रुव स्थिति है, 31 में से चार समय कम हो गए डायरेक्ट उसके। एक कांडक पूरा घट गया ना वहां से, देखो देखो उत्कीर्ण काल का भी समय ले रहे हैं और कांडक, देखो उतने समयों में उतने कालों में पूरा स्थिति का कांडक का घात हुआ, तो जितना कांडक है उतना घात हो गया ना उसका। स्थिति कांडक में क्या होता है, पूरा नहीं, एक हाँ, एक समय में आया, दो समय में, तीन समय, अभी चार समय में जितना लॉट है वो पूरा घट जाता है, उसको स्थिति कांडक घात कहते हैं। हाँ, चार समयों में एक्चुअली, हाँ उसमें एक एक समय उन्होंने घटाया है। हाँ, क्योंकि उत्कीर्ण काल के जितने समय उतना नीचे का सत्व एक एक निश्चय घट रहा है, बरोबर। देखो अभी हम लेते हैं, मान लेते हैं, एक दो तीन चार, कितने मान ले हमने, 16 है यहाँ पर, अभी यहाँ उत्कीर्ण काल चार समय है, अभी उन्होंने कांडक भी चार का लिया है, परंतु वो फिट नहीं होगा। उत्कीर्ण काल का एक समय गया, दो समय गए, तीन समय गए, चार समय गए, और यहाँ कांडक भी वो चार का, पहले तो उसमें थोड़ा थोड़ा गलता गया, अब चार कांडक यानी वो सब पूरा निकल गया ना, इस तरह से उत्कीर्ण काल में एक एक निशेक खिरता है और ऊपर का निशेक नहीं, उसमें से थोड़े थोड़े परमाणु आते हैं, और उत्कीर्ण काल पूर्ण होने पर पूरा कांडक गल जाता है, यानी स्थिति कटेगी ना उतनी। हाँ, उत्कीर्ण काल में एक एक निशेक गलता है और उस काल में स्थिति कांडक घात हो रहा है। हाँ, पूरा घात गल जाता है, तो चार समयों में स्थिति का घात भी हो रहा है, कांडक घात भी हो रहा है, और नीचे एक एक निषेक भी गल रहा है। ये ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग चल रहा है। देखो देखो उत्कीर्ण काल के यहाँ कितने समय, तीन ज्यादा लिए थे, वो तीन, और स्थिति कांडक के भी, स्थिति कांडक से तीन समय कम, स्थिति कांडक से अधिक, यानी उसमें एक लिया था, यानी चार अधिक वाला जीव लिया, चार अधिक वाला लिया, तो चार समयों में चार निषेक गिल गए और पूरा एक स्थिति कांडक चार का घट गया, चार प्लस चार आठ समय घट गए, तो चार अधिक थे, अभी चार हीन हो गए। उत्कीर्ण काल ने स्थिति कांडक घात होने के लिए जितना समय लगता है उसको उत्कीर्ण काल कहते हैं। देखो 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 फिर ये बहुत सारे 100 है समझ लो। अभी उसमें से ऊपर के अभी हम अलग प्रमाण ले लेंगे, 6 निषेकों का कांडक होगा तो उसके लिए 4 समय मान लेते हैं। पहले समय में क्या होगा, उसमें उसका थोड़ा द्रव्य नीचे आया बराबर, यहां भी एक निषेक कम हो गया। दूसरे समय में उससे थोड़ा माल नीचे आया, इसर यहां का दूसरा समय गल गया। तीसरे में और थोड़ा आया, यहां एक निषेक कम हो गया। चौथे में वो पूरे 6 कम हो गए और यहां चौथा गया। चार समय में पूरा कांडक गया, तो ये 4 समय में भी गए, वो 6 समय में भी गए। कांडक हाँ, कांडक प्लस उत्कीर्ण काल कम हो गया। अगर कांडक नहीं होता है तब तक तो उतनी स्थिति कायम है ना, अंतिम फाली गिर जाएगी तो कांडक हो जाएगा, यानी कांडक जितना कट हो जाएगा एक साथ अंतिम फाली के गिरने पर। अंतिम फाली जब तक नहीं गिरती है तो उत्कीर्ण काल के समय है उतने ही निशे गल जाएंगे, क्योंकि एक इंद्रिय में आया है ना अभी वो, अभी तो स्थिति बंध जो नया स्थिति बंध है वो सत्व से बहुत छोटा है और यहाँ कांडक घात हो रहे हैं, तभी 4 समय उत्कीर्ण काल के और 4 समयों का स्थिति कांडक है, तो पूरे कांडक बीच जाने पर 8 निकल गए। हाँ, अभी हमने वो 35 से शुरू किया था, 31 से ऊपर 4 थे। हाँ, वो नीचे ध्रुव स्थिति के नीचे 4 समय आ गए। देखो इसी बात, हाँ, कांडक होने के लिए कितना समय लगता है उसको उत्कीर्ण काल कहते हैं, वो अंतर्मूर्त का होता है। अभी हमने स्थिति कांडक घात देखे थे ना, ये प्रायोगिक लब्धि में भी बड़ा होता है या बाद में भी अपूर्वकरण से तो सतत लगातार होते हैं, एक इंद्रियों में भी होते हैं स्थिति कांडक घात, ये तो ज्ञान आवरण आदि कर्मों के, क्योंकि अभी स्थिति तो कम बांध रहे हैं ना और लंबी स्थिति लेकर नीचे आया है। हमने एक क्षपित कर्मांशिक में देखे थे ऐसे वाले जीव, स्थिति कांडक करने वाले। देखो ये पहले वाले, फिर एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा ख्याल आएगा। अभी यहाँ बता रहे हैं यही बात है। देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये 3 लाइन तक पढ़ा था, शेष रहा स्थिति सत्कर्म 4 रूपों से कम ध्रुव स्थिति प्रमाण पाया जाता है। 97 पेज 3 लाइन हमने पढ़ी। इस प्रकार इस क्रम से स्थिति कांडक प्रमाण अपुनरुक्त स्थानों को उत्पन्न करा के पश्चात स्थिति कांडक प्रमाण स्थान हो गए ना, जब तक स्थिति कांडक हो रहा है तब तक एक समय कैसा गलेगा, उत्कीर्ण काल का एक एक समय कम होगा। जब स्थिति कांडक पूरा हो जाएगा वो तो हाँ, पूरा जितना स्थिति कांडक है उतना सत्व घटेगा एक साथ। जब तक पूरा कांडक नहीं होता था उसमें से थोड़े थोड़े परमाणु आते थे नीचे, स्थिति कांडक की अंतिम फाली गिर गई तो इतनी स्थिति एक समय में कम हो गई। पहले तो एक एक समय खाली गलने वाला निषेक एक कम हो रहा था, एकदम घटी। तब तक तो सामान्य जिसको हम अपकर्षण कहते हैं वैसा हो रहा था। हाँ कंप्लीट होगा, परंतु चार निषेक के गलते समय नीचे से उदय होकर भी गल रहे हैं और नया बंदे इतना है ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा लेते। चार समय में उत्कीर्ण काल हुआ और चार समय में ही स्थिति कांडक हुआ। हाँ तो चार समय में स्थिति कांडक हुआ तो वो चार समय वाला एक साथ घट गया ना, अकेला उदय होकर चार समय अगर निकल जाते तो उसको कांडक घात नहीं कहते। हाँ एक इंद्रिय में आया, अभी देखेंगे आगे कैसे वो, क्योंकि कांडक का प्रमाण मेरे ख्याल से बड़ा होना चाहिए। उत्कीर्ण काल तो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होगा, नहीं वो तो विशुद्ध परिणामों में बड़े बड़े कांडक होते हैं, पल्लों के होते हैं, उसकी बात नहीं यहाँ पर। अभी यहाँ की जो कुछ यथायुगत विशुद्ध, पर अभी हम एक इंद्रियों में आए हैं। हाँ वो तो ध्रुव स्थिति वहां तक आ गई उसकी। अब यहाँ क्या लिखा है, 93 पेज पर क्या लिखा है नीचे से पांचवी लाइन में, अब इसके नीचे बंध को छोड़कर स्थिति सत्व का घात करके एकेंद्रियों में स्थिति सत्व स्थानों की प्ररूपणा करते हैं। एकेंद्रियों में प्रविष्ट हुआ लिखा है ना 94 पर, देखो 93 94, देखो 93 का अंतिम लाइन, एक त्रस जीव एक समय कम उत्कीर्ण काल से अधिक, 93 की अंतिम लाइन, ध्रुव स्थिति सत्व से एकेंद्रियों में प्रविष्ट हुआ। ये सारे ही अलग अलग एकेंद्रिय जीव लिए, कितने स्थिति के साथ एकेंद्रिय में आए हैं उसकी बात ली वहां पर। एक सौ आठ पेज कंपेयर एक इंद्रिसी कर रहे, क्योंकि हमने देखा था श्रेणी में भी कि वो तो असंगी के समान स्थान हो जाते हैं, फिर चतुर इंद्रिय के समान स्थान होते हैं, समान होते का अर्थ हो तो वो पुनरुक्त है ना, स्थिति की ही समानता बता रहे। हाँ पर ये भी एक इंद्रियों में प्रविष्ट हुए जीव की बात चल रही ना यहाँ पर, हमने क्षपित कर्मांशिक में एकेंद्रियों में वो कांडक गेंद देखे थे 10वीं पुस्तक में। आगे पढ़ेंगे ना हम, वो कंटिन्यू कहाँ तक लेते हैं उसकी बात ख्याल में आएगी। देखो अभी हम कहाँ तक आए थे, 97 पर आए थे, तीसरी लाइन पढ़ी थी, चार रूपों से कम ध्रुव स्थिति प्रमाण होता है। इस प्रकार इस क्रम से स्थिति कांडक प्रमाण अपुनरुक्त स्थानों को उत्पन्न करा के पश्चात उत्कीर्ण काल के अंतिम समय के साथ अंतिम फाली को लेकर स्थित जीवों के द्वारा अंतिम फाली के अलग किए जाने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। देखो जब अपुनरुक्त कहते हैं तो वो एक इंद्रिय क्या है, पंच इंद्रिय क्या, इसी हम स्थानों के विकल्प देख रहे हैं। उत्कृष्ट स्थान से हमने शुरू किया था और एक 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 समय कम करते हुए हम देख रहे हैं जो स्थान दोनों में पाए जाते हैं, पंचेंद्रियों में भी और एकेंद्रियों में भी, उसको पुनरुक्त कहा है। और जो अभी हम देख रहे हैं उसको अपुनरुक्त स्थान कहेंगे। हाँ, ध्रुव स्थिति से भी नीचे के स्थान, क्योंकि घातने से शेष रहा स्थिति सत्कर्म एक अधिक स्थिति कांडक से हीन ध्रुव स्थिति प्रमाण देखा जाता है। देखो क्या कहते हैं, ध्रुव स्थिति के नीचे कितना शेष रहा, एक कांडक कम हो गया ना उसमें से। ऐसा करने पर एक अधिक स्थिति कांडक के बराबर ही अपुनरुक्त स्थान प्राप्त होते हैं। घातने से शेष रहे समस्त जघन्य स्थिति सत्कर्म की अपेक्षा प्रथम स्थिति कांडक का घात करके स्थापित हुआ शेष उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म स्थिति कांडक मात्र से अधिक होता है। इसको फिर पढ़ेंगे। देखो ऐसा करने पर एक अधिक स्थिति कांडक के बराबर ही अपुनरुक्त स्थान प्राप्त होते हैं। जितने स्थिति कांडक के समय उसके जितने फालियां है, हाँ, स्थिति कांडक की जितनी फाली है उसमें एक अधिक स्थिति कांडक के बराबर अपुनरुक्त स्थान प्राप्त होते। इस विशिष्ट जीव की बात चल रही ना, चतुर्थ जीव के द्वारा ये बात चल रही थी अपनी। अब घातने से शेष रहे समस्त जघन्य स्थिति सत्कर्म की अपेक्षा प्रथम स्थिति कांडक का घात करके स्थापित किया हुआ शेष उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म स्थिति कांडक मात्र से अधिक होता है। इसका अर्थ नहीं ख्याल में आया। हाँ, उसमें जो जघन्य और उत्कृष्ट बात है, शेष रही कर्म की बात है, किसी का जघन्य शेष रहा और किसी का उत्कृष्ट शेष रहा, तो कितना है ज्यादा है, तो स्थिति कांडक का डिफरेंस है उसमें। इस प्रकार से स्थिति सत्कर्म स्थानों के द्वितीय स्थिति कांडक का आश्रय करके अपुनरुक्त स्थानों की उत्पत्ति को कहते हैं। यथा एक एक समय की अधिकता के क्रम से स्थिति सत्व को लेकर स्थित, ये सत्व की बात है, एक अधिक स्थिति कांडक मात्र जीवों में से अलग अलग जीव लिए हैं, उसका सत्व एक एक समय से अधिक, ऐसे अलग अलग जीव लिए हैं। ऐसे जीवों में कितने जीव लिए टोटल, एक अधिक स्थिति कांडक मात्र जीव, जीवों में से सर्व जघन्य स्थिति सत्कर्मिक जीव के द्वारा द्वितीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है। उस समय अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है कि जिसकी सत्व स्थिति सत्व यानी स्थिति सत्व सबसे जघन्य है, ऐसा जीव लिया। हमने कितने जीव लिए थे, जो स्थिति कांडक का प्रमाण है प्लस एक समय, एक डालो उसमें, समय की बात नहीं है यहाँ, इतने जीवों की संख्या ली, अलग अलग जीव, और हर एक में एक 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 समय से अधिक स्थिति सत्व है, उसमें सबसे जघन्य स्थिति सत्व वाला जीव लिया। उसके द्वारा चौथी लाइन द्वितीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के अलग किए जाने पर, ये द्वितीय कांडक की बात चल रही है ना अभी, उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, एक समय कम हुआ, हाँ एक फाली ही कम हुई, पूरी सत्ता में से सत्ता उतनी रही, एक फाली कम हुई। उस समय अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि पूर्व के स्थिति सत्कर्म की अपेक्षा यह स्थिति सत्कर्म एक समय कम देखा जाता है। उत्कीर्ण काल का एक समय है, उसमें से स्थिति में से कांडक खो के नीचे आया माल, परंतु समय एक ही गल गया, जो हर समय निक्षे गलता है, क्योंकि एकेंद्रिय में आया है ना त्रस में से, अभी यहाँ छोटी स्थिति बांध रहा है, नया स्थिति बंध अल्प है, स्थिति कांडक होते हैं, तो कांडक होने के लिए भले कितने समय लगो, परंतु उस उतने समयों में एक एक निषेक गल जाएगा, हर समय तो उदय तो होता है, उदय होकर एक एक कम होगा, और अंतिम फाली गिरने पर कांडक भी कम होगा। जब तक पूरा कांडक नहीं गिरता तब तक एक एक समय कम होगा, और अंतिम फाली गिरने पर पूरा कांडक जितना घट जाएगा, तो ये एक एक समय कम कर रहे हैं। अब जघन्य में जघन्य लिया था, इसलिए उसका भी एक समय कम हुआ, तो अपुनरुक्त स्थान हुआ उसका। मैक्सिमम वाले लेते और कम करते तो बाकी तो जीव है ना वहां पर, उसको पुनरुक्त कह देते, एक समय कम देखा जाता है। फिर इसी जीव के द्वारा द्वितीय फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, गलता है का अर्थ है वो एक वहां निषेक गल जाता है, यह भी अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि जघन्य में जघन्य जीव लिया है और उसका एक गया दूसरा निषेक गया। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण फालियों को अलग करके एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण ही अपुनरुक्त स्थानों को उत्पन्न कराना चाहिए। हाँ तीन समय गए, बराबर है ना, यहाँ तक समझ में आया? उत्कीर्ण काल का आप कहेंगे नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनना पड़ेगा क्या? इतना ही समझना है हमको। देखो स्थिति कांडक घात होता है ना, क्या होता है कांडक, किसको कहना, अनेक निषेकों के समूह को कांडक कहते हैं, बराबर। अभी वो कांडक समझो है 100 निषेकों में से 20 निषेक गल जाने वाले, उसकी स्थिति एकदम घटने वाली है, तो वो 20 निषेक घटने के लिए समय तो तीन ही लगेंगे, मान लेते हैं तीन समयों में 20 निषेक नीचे आएंगे, पहले समय में थोड़ा माल, दूसरे समय में और थोड़ा, तीसरे समय में बाकी सब पूरा, तीन फाली हो जाएगी उसकी। कांडक का प्रमाण 20, फाली का प्रमाण तीन, तो तीन समयों में तीन फाली गिरेगी, एक लौट आया, दूसरा लौट आया, तीसरा लौट आया, तो तीन समय होने तक नीचे का भी एक एक उदय रूप निषेक निकल रहा है, तो तीन गए वहां से और ऊपर के 20 घर गए, लास्ट फाली निकल गई। तो हाँ जब एक समय घट गया अपुनरुक्त, दो समय अपुनरुक्त, तीन वो भी है। हाँ वो ये जघन्य से शुरू किया था ना हमने, इसलिए अपुनरुक्त बता रहे। हाँ तो एकदम घटेगा, एकदम घटेगा, पहले तो एक कम हुआ 99 हुए, फिर दो कम हुआ 98 हुए, 97 हुए, फिर वो 20 सब कम हुए, जब 96 की पारी आई थी तो वो 20 कम हो गए, तो जब 96 में से 20 घट गए 76 पर आ गए। यानी ये एकेंद्रियों में ही स्थिति कांडक घात होती, क्योंकि हमने अभी आप निकाल के देखना उक्षपित कर्मांशिक में हमने देखा था, गुणित कर्मांशिक वाले में वहां उसकी बात नहीं की थी, क्षपित कर्मांशिक वाले को ली थी वो स्थिति कांड घातों की बात।
नहीं,
वो त्रस में से आए ना, अभी स्थिति लंबी है और उसका बंध जो है छोटा है, इसी एक जीव की अपेक्षा अंतर है, परंतु अन्य अन्य जीवों में वो बीच वाले स्थान होगी ना सारे, क्योंकि हमने कांडक प्रमाण अलग अलग जीव लिए हैं तो अलग अलग जीवों की अपेक्षा वो पुनरुक्त हो गया, यानी समानता हो सकेगी, या बीच बीच में वो अंतर नहीं पड़ेगा, वो एक एक समय से घटित होगी सब अलग अलग सत्ता। कांडक एक, परंतु कितनी स्थिति के साथ एक इंद्रियों में आया है, अलग अलग जीव अलग अलग स्थिति के साथ आया है ना, हमने देखे ना कोई अलग जीव है, कितने हमने पल्ले के असंख्यात भाग जीव तो एक इंद्रियों में उत्पन्न कराए और उसमें ये घटित कर रहे हैं। हो सकता है कोई पंचेंद्रिय में से आए, कोई द्विंद्रिय में से आए, अलग अलग सत्ता वाले जीव आए हैं, यहाँ एक इंद्रिय की बात हो रही है। देखो 98 के दूसरी लाइन, पश्चात उत्कीर्ण काल के अंतिम समय में, अभी अंतिम समय तो अभी वो पूरी फाली गिर नहीं है, अभी उसका भी फाली का भी अंतिम समय, यानी वो सत्ता में है अभी, द्वितीय स्थिति कांडक की अंतिम फाली को लेकर स्थित जीव को इसी प्रकार स्थापित करके फिर इन जीवों में से सर्वोत्कृष्ट स्थिति सत्कर्मिक जीव के द्वारा, अभी वो जीव अलग रखा, वो कौन सा जीव लिया था, सबसे जघन्य स्थिति वाला लिया था और उसने द्वितीय कांडक किया, ऐसा जीव लिया, उसमें से एक एक उत्कीर्ण काल के एक एक समय में एक एक ही निषेक गला है, अब वो अंतिम समय में आकर स्थित है, अंतिम फाली वाला है, अब ये दूसरा कौन सा ले रहे, उत्कृष्ट स्थिति कर्मिक जीव लिया, लिखा नहीं है, देखो उस जीव को ऐसे स्थापित करके फिर इन जीवों में से, हमने जीव लिए ना स्थिति कांडक में एक अधिक मिलाकर जितने अलग अलग जीव थे उसको लिया था, अभी ये अन्य जीव कैसा लिया, उत्कृष्ट स्थिति वाला लिया है, तो सर्वोत्कृष्ट स्थिति सत्कर्मिक जीव के, सत्कर्मिक यानी स्थिति सत्व वाला जीव, हाँ द्वितीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के अलग किए जाने पर प्रथम समय गलता है, यह स्थान पुनरुक्त है, यह अधिक स्थिति वाला लिया है और उसका गला तो भी क्या है, उतना तो पुनरुक्त स्थान उसका होगा, वो जघन्य में गलने के बाद क्या हुआ, वो जघन्य के भी नीचे चली गई स्थिति, इसलिए उसका पुनरुक्त कहा, परंतु उत्कृष्ट स्थिति वाला एक समय गला फिर भी वो उत्कृष्ट, वो पुनरुक्त ही बताएंगे बीच वाले सारे। द्वितीय फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह स्थान भी पुनरुक्त है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में उसकी उत्कृष्ट स्थिति थी वो घट गई, तो हमने तो कितने ही जीव लिए उतनी स्थिति वाले, तो वो तो स्टार्टिंग में ही उतनी स्थिति वाले थे, वो सारे उसके स्थान पुनरुक्त हो गए। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण कम काल प्रमाण फालिया जब तक अलग होती है तब तक पुनरुक्त ही स्थान उत्पन्न होते हैं, फिर इसी जीव के द्वारा द्वितीय स्थिति कांडक की अंतिम फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है। क्यों? क्योंकि पहले स्थापित करके आए हुए स्थिति सत्कर्म की अपेक्षा यह स्थिति सत्कर्म एक समय कम देखा जाता है, अब ये जो ऊपर हमने देखा था वो जीव उससे यह कम है, अभी इसमें है ना जिसकी उत्कृष्ट स्थिति है उसका कांडक का प्रमाण में वेरिएशन होता है, अब जो कुछ है तो उसका एक समय कम वाला ये जीव लिया, हम तो अनुत्कृष्ट के वेरिएशंस कैसे है उसको देख रहे हैं, एक केंद्रियों में ये पुनरुक्त अपुनरुक्त घटा रहे हैं। तत्पश्चात इस जीव की अपेक्षा द्वितीय जीव के द्वारा द्वितीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, यह पुनरुक्त स्थान है, अब उस पर घटा रहे अन्य जीव के ऊपर। द्वितीय फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी स्थान पुनरुक्त ही है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण फालियों के अलग होने तक पुनरुक्त ही स्थान उत्पन्न होते हैं। पश्चात इसी जीव के द्वारा द्वितीय स्थिति कांडक की अंतिम फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है। इस प्रकार अंतिम समय के गलने पर यह अपुनरुक्त स्थान होता है। अलग अलग जीवों के पूरी सब फालियां निकल जाती है तब अपुनरुक्त अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होते हैं। हाँ, दो स्थिति कांडक की बात चल रही है यहाँ पर। एक स्थिति कांडक की बात पहले बता चुके, अब ये दूसरे कांडक की बात बता रहे, क्योंकि अंतिम फाली के अलग होने पर पूर्वोक्त जीव के स्थिति सत्व से शेष स्थिति सत्व समान हो करके पश्चात उत्कीर्ण काल के अंतिम समय के गलने पर उससे एक समय कम हो जाता है। ये एक समय का डिफरेंस उसमें पड़ता है। पहले क्या किया था, वो उसके समान हुआ था, जब अंतिम फाली थी तब उसके समान हुआ था, अंतिम फाली गिर गई तभी वो उसका एक समय कम हुआ। यह अर्थपद आगे सब जगह कहना चाहिए। अर्थपद यानी पद यानी ऐसा ही समझना, हाँ ऐसा ही आगे भी समझना चाहिए हर एक के बारे में। उन्होंने तो एक एक समय कैसे घटता चला जाएगा, कौन कौन से जीव को, उसको बताया। तत्पश्चात उससे तीसरे जीव के द्वारा द्वितीय कांडक की प्रथम फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है। ये अलग अलग जीव कैसे लिए हैं, अलग अलग स्थिति सत्व के साथ वहाँ आए हुए, उसकी बात चल रही, और सब जीवों में द्वितीय कांडक को घटा रहे, उसके गलने पर पुनरुक्त स्थान होता है। अभी यही बात है, दूसरा फाली गई, तीसरी फाली गई, सब पुनरुक्त कहेंगे, अंतिम फाली तक पुनरुक्त कहेंगे, वो गलने पर अपुनरुक्त कहेंगे। देखो प्रथम समय गलता है, उसके गलने पर पुनरुक्त स्थान होता है। द्वितीय फाली के नष्ट होने पर उत्कीकरण हुआ है, उत्कीर्ण चलना चाहिए, क निकालना। उत्कीर्ण काल को दूसरा क्या नाम है मालूम है आपको, याद है, क निकालना, उत्कीर्ण चाहिए, उत्कीकरण हुआ है। स्थिति कांडक उत्कर्ण काल इतना भी कहते हैं, या स्थिति कांडक घात काल। एक फाली को एक समय कहेंगे, उत्कीर्ण काल का एक समय, उत्कीर्ण काल यानी जितने समयों में पूरा कांडक घात होता है उसको उत्कीर्ण काल कहते हैं। कांडकोत्करण काल कहो या उत्कीर्ण काल कहो या कांडक घात काल कहो, एक ही स्थिति कांडक आयाम किसको कहना, स्थिति कांडक का प्रमाण कितना है, उसको नंबर ऑफ निषेक कितने नष्ट हो जाएंगे, वो स्थिति कांडक आयाम, और उतना होने के लिए जितना काल लगता है उसको हमने पहले स्थिति कांडक उत्करण काल, इतना यहाँ केवल उत्कीर्ण काल कहने से वो समझ में आता है, वो प्रोसेस होने के लिए जितना काल लगता है उसको उत्कीर्ण काल कहते हैं। तो द्वितीय समय गलता है, ये दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन अभी एंड में, यह भी पुनरुक्त स्थान है। फिर तृतीय फाली के नष्ट होने पर उत्कीर्ण काल का तृतीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। इस प्रकार जब तक एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण फालिया पतित होती है तब तक पुनरुक्त स्थान ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अन्य जीवों के समान ये पाए जाते हैं। हाँ, एक स्टार्टिंग ही उसकी एक स्थिति कम ली है। और जब सभी फालियां निकल जाएगी तो उसका फाइनल रिजल्ट वो अपुनरुक्त स्थान होगा, वो एक समय कम होगा। पुनरुक्त स्थान ही उत्पन्न होते हैं। नीचे से चौथी लाइन अंत में, पश्चात इसी जीव के द्वारा अंतिम फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है। पूरी सभी फालियां गलती है तो उत्कीर्ण काल के जितने समय है उतने तो गए और पूरा कांडक भी गया। ये अपुनरुक्त हुआ। पहले तो एक एक समय से कम होता था, ये तो अन्य जीवों के साथ समानता होती उसकी। अब पूरा कांडक निकल गया तो ये अपुनरुक्त हुआ, क्योंकि अंतिम फाली के पतित होने पर पहले जीव के स्थितिसत कर्म से समानता को प्राप्त हुआ। शेष स्थिति सत्कर्म उत्कीर्ण काल के अंतिम समय के गलने से, अंतिम समय में कैसा था, पहले जीव के समान हुआ था, अब यह गल गया तो क्या हुआ, अपुनरुक्त स्थान हुआ, एक समय कम देखा जाता है। पुनः उससे चतुर्थ जीव के द्वारा, ये पहले से ही वो कंपेयर कर रहे हैं, पहले से दूसरे की कंपेयर हुई, तीसरे की कंपेयर हुई, फिर अभी चौथे की, चतुर्थ जीव के द्वारा द्वितीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है। द्वितीय फाली के अलग किए जाने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है। पश्चात तृतीय फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का तृतीय समय गलता है। अब पहले जैसा उसको पुनरुक्त कहेंगे। अब पुनरुक्त कब कहेंगे, सभी वो पूरा स्थिति कांडघात हो गए तब। हाँ बराबर, यह भी पुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण फालियां जब तक पतित होती है, फालियां ने लौट, जब तक वो नीचे नीचे आ रहे हैं, पूरा अभी निषेक वहां से समाप्त नहीं हुए, अंतिम फाली खिरेगी और ऊपर का स्थिति घटेगी एक साथ जब तक होती है, तब तक पुनरुक्त स्थान ही उत्पन्न होते हैं। पश्चात अंतिम फाली के अलग किए जाने पर, ये सारे ऊपर के परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं तो अंतिम फाली पतित हुई कहेंगे। क्या होगा तब, उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यानी उत्कीर्ण काल के जितने समय उतने तो गल गए और ऊपर के भी उतने, कांडक के जितने समय वो भी नीचे आ गए। यह अपुनरुक्त स्थान होता है। जब जब एक कांडक होता है तब तक उसका पूरा हो जाता है, तब अपुनरुक्त स्थान होता है। अलग अलग जीवों की बात की ना, और कंपेयर किए वो पहले जीव के साथ, उससे एक समय कम वाला जीव लिया, दो समय, क्योंकि उसकी स्थिति स्टार्टिंग में ही वो एक समय से ज्यादा थी। देखो, क्योंकि अंतिम फाली के विघटित होने पर पूर्व स्थिति सत्कर्म से समानता को प्राप्त हुआ, शेष स्थिति सत्कर्म उत्कीर्ण काल संबंधी अंतिम समय के गलने से एक समय कम देखा जाता है। इस प्रकार इस क्रम से स्थिति कांडक प्रमाण व एक समय कम उत्कीर्ण काल से अधिक अपुनरुक्त स्थिति सत्व स्थानों को उत्पन्न कराकर क्या कहते हैं, स्थिति कांड का जितना प्रमाण है उतना प्लस एक समय कम उत्कीर्ण काल, उससे अधिक क्या, अपुनरुक्त स्थिति सत्व स्थानों को उत्पन्न कराना। इतने एक एक समय से अलग अलग जो स्थान है उनको उत्पन्न करा के फिर पश्चात पहले स्थापित जीव की अपेक्षा अपुनरुक्त स्थानों की उत्पत्ति कही जाती है। देखो यहाँ क्या किया, कहा अभी हमने पहले मान लिया था ना, वो 96 100 के साथ आया था और वो एक स्थिति कांड का तो 76 पर आ गया। अन्य अन्य जीव वो 96 के बाद वो 95 वाला होगा, कोई 94 वाला होगा, वो अपुनरुक्त गए। अब ये जो एकदम इसके एक जीव की अपेक्षा जो गैप पड़ा था वो 76 पर आया था ना, हमने देखा था, तो कहते हैं पहले स्थापित जीव की अपेक्षा अपुनरुक्त स्थानों की उत्पत्ति कही जाती है। ये कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देतो। विनोद भाई।